بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتا، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمب ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے۔ آج آپ سورہ آلہ کی آیت کرمانک 1 سے 17 تک کی تلاوت اور اس کا انواد سنیں گے۔ قاری ہیں سورگی محمد صدیق منشاوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير صدق اللہ العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتنت کرپاشیل اور دیاوان ہے، ہی پیغمبر اپنے سروچ پالنہار کے نام کا گنگان کیجئے، جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا، جس نے بھاگ نردھارت کیا پھر مارگ دکھایا، جس نے ونسپتی اگائی پھر اسے سوکھا اور کالا بنا دیا، پھر ہم آپ کو شیگر ہی اس پرکار قرآن پڑھائیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں، سوائے یہ کہ ایشور ہی یہ چاہے کہ نسندیہ وہ ہر سپشٹ اور چھپی بات کو جانتا ہے، اور ہم آپ کو ہر بھلے کاری کے لیے تیار کر دیں گے، اتا نصیحت کیجئے، یدی نصیحت لاپ پرد ہو، اور شیگر ہی ایشور سے ڈرنے والا ویکتی نصیحت حاصل کر لے گا، کنتو اتین درباگ والا اس سے کترائے گا، وہی جو بڑی آگ میں گر پڑے گا، پھر وہ اس میں نہ تو مرے گا نہ ہی جیے گا۔ نشچت روپ سے جس نے اپنے آپ کو پوتر بنا لیا وہ سفل ہو گیا، اور جس نے اپنے پالنہار کے نام کا اسمرن کیا پھر نماز ادا کی۔ نہیں، بلکہ تم تو سانسارک جیون کو پراتھمکتا دیتے ہو، جبکہ پرلوک ادھک اتم اور شیش رہنے والا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑراج ایران کی آواز۔ دوستو، آپ ہمارے کارکرم کو شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ برابر 9620 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@ws.irib.ir، اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے 00989035065492۔ تو دوستوں، آج منگلوار ہے، آبان کی 10 اور نومبر کی پہلی تاریخ ہے۔ ساتھ ہی آج اسلامی کیلنڈر کے چوتھے مہینے ربیع الثانی کی 6 تاریخ ہے۔ آج کی ہمارے سبا کے کاریکرموں کی روپ ریکھا کچھ اس پرکار ہے۔ سب سے پہلے آپ خبر سنیں گے، اس کے بعد آپ کی سیوا میں کاریکرم راجنیتک چرچا پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ سنیں گے کاریکرم قرآنی قصے، اور آج کی سبھا کے انت میں آپ کی سیوا میں پیش کیا جائے گا کاریکرم جیوک یدھ کا خطرہ۔ تو دوستوں، کاریکرم کے انوسار اب آپ ریڈیو ہندی تہران سے راشٹری اور انترراشٹری سماچار رویش زیدی اور مریم مہردادی سے سنیں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ودیشیوں کے ہستکشیپ نے کاکیشیا کھیتر کی سمسیاؤں کو بڑھایا ہے، راشٹرپتی رئیسی۔ ایران نے امریکہ کے 4 سنستانوں اور 10 ناگرکوں پر لگایا پرتیبندھ۔ امریکہ نے ایران کے پرمانو کارکرم کے خلاف سینیہ شکتی کے استعمال کی دی دھمکی۔ آخر کار بھارت نے ایران کو لے کر اپنی غلطی مانی، امریکہ اور یورپ کے دباؤ میں نہ آنے کی بات کہی۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
اسلامی گڑراج ایران کے راشٹرپتی نے کہا ہے کہ کاکیشیا کھیتری ایران کے اتہاس، سبھیتا اور سنسکرتی کا ایک حصہ ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ودیشیوں کے ہستکشیپ سے کاکیشیا کھیتری کی سمسیائیں بڑھ جائیں گی۔ سماچار ایجنسی ارنا کی رپورٹ کے مطابق اسلامی گڑراج ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی نے منگلوار کو دیپکشیے کھیتریے اور انتراشٹریے وشیوں پر آرمینیا کے پردھان منتری نکول پاشینیان کے ساتھ ملاقات کے بعد ایک سنیکت پریس وارتا میں پترکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آرمینیا کے پردھان منتری کی ایران اسلامی گڑراج کی یاترا دونوں دیشوں کے سمبندھوں کے وکاس اور وستار میں ایک مہتوپورن موڑ ہوگی۔ راشٹرپتی رئیسی نے بتایا کہ پچھلے کچھ مہینوں میں ایران اور آرمینیا کے بیچ ویاپار سمبندھوں میں 43% کی وردھی درج کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور آرمینیا کے بیچ $3 ارب کا ویاپار حاصل کرنا دونوں دیشوں کی اچھا سے پوری طرح سمبھو ہے۔ اسلامی گڑراج ایران کے راشٹرپتی نے کہا کہ کاکیشیا کھیتر میں سرکشا اور شانتی ایران کے لیے بہت مہتوپورن ہے۔ انہوں نے کہا کہ کھیتری سمسیاؤں کا سمادھان ادھیکاریوں اور اس کھیتر سے جڑے لوگوں کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، اور کھیتر میں ودیشیوں دوارا کسی بھی طرح کا ہستکشیپ سمسیا کو حل کرنے کے بجائے سمسیا پیدا کرے گی۔
ایران نے مانواधिकारوں کا الگھن کرنے، ایران کے آنترک معاملوں میں ہستکشیپ کرنے اور ایران میں ہنسا تتھا دنگے بھڑکانے کے آروپ میں کخیات خفیہ ایجنسی CIA سمیت 10 امریکی ناگرکوں اور 4 سنستانوں کو پرتیبندھت کر دیا ہے۔ प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी गणराज्य ईरान के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को अपनी वेबसाइट पर एक बयान प्रकाशित करके ये सूचना दी है कि हालिया दिनों में ईरान में होने वाले दंगे के मुख्य साजिशकर्ता अमरीका के लगातार देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और मानवाधिकारों के खुले उल्लंघन को देखते हुए तेहरान ने कुख्यात खुफिया एजेंसी CIA समेत 4 अमरीकी संस्थानों और 10 नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश मंत्रालय के बयान में आया है कि अमरीका द्वारा लगातार किए जाने वाले मानवाधिकार के उल्लंघन, क्षेत्र में की जाने वाली आतंकवादी कार्रवाइयां और आतंकवाद का समर्थन, साथ ही ईरानी राष्ट्र पर अधिक दबाव बनाने के लिए उसके द्वारा अपनाई गई आर्थिक आतंकवाद की नीति के खिलाफ ईरान ने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अमरीका पर प्रतिबंध लगाया है।
एक और अमरीका और कुछ पश्चिमी देश लगातार ईरान पर प्रतिबंधों का हमला जारी रखे हुए हैं और इस प्रयास में हैं कि तेहरान को दुनिया से अलग थलग कर दें। लेकिन जितना वे इसके लिए कोशिश कर रहे हैं उतना ही इस्लामी गणराज न केवल विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है बल्कि विश्व के ज्यादातर देश ईरान से अपने संबंधों को बेहतर और मजबूत बना रहे हैं। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामी गणराज ईरान के बैंक दुनिया के 40 बैंकों के साथ $20 अरब का वित्तीय लेन देन कर रहे हैं। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में घोषणा की है कि वर्ष 2022 की पहली छमाही में अंतर्राष्ट्रीय बैंकों और वित्तीय केंद्रों में ईरान के सरकारी खातों में 3% की वृद्धि हुई है जिसमें $50 मिलियन से अधिक मौजूद है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय खातों में $17.5 अरब की रकम मौजूद थी जो अब बढ़कर $18.6 अरब हो गई है।
IRGC ने 1.10 करोड़ लीटर तेल की तस्करी करने वाले जहाज को जब्त कर लिया है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की इस्लामिक क्रांति फोर्स IRGC ने एक विदेशी जहाज को पकड़ा है जो 1.10 करोड़ लीटर या 2.9 मिलियन गैलन तेल की तस्करी कर रहा था। सोमवार को हुर्मुज़गान प्रांत के न्यायपालिका प्रमुख मुश्तबा कारमानी ने बताया कि IRGC ने फारस खाड़ी के पानियों में एक अनाम जहाज को जब्त कर किया है। तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस विदेशी टैंकर के कप्तान और चालक दल को भी हिरासत में लिया गया है क्योंकि जांच और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। जहाज और उसके चालक दल की राष्ट्रीयता के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है लेकिन कहरमानी ने बताया कि जहाज $6.6 मिलियन की कीमत का तेल लेकर जा रहा था।
यूक्रेन युद्ध के बीच भारत के रूस से सस्ता तेल खरीदने के मुद्दे को पश्चिमी मीडिया ने एक बार फिर से हवा देने की कोशिश की है। अमरीका के चर्चित टीवी चैनल CNN की एंकर बेकी एडनसर ने भारतीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमरीकी टीवी एंकर बेकी एंडरसन को यूरोप के आंकड़ों का उदाहरण देकर ऐसा करारा जवाब दिया कि सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। वहीं कई विशेषज्ञ भारत को ईरान वाली गलती नहीं दोहराने की सलाह दे रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार रूस से तेल खरीदने का मुद्दा भारत और अमेरिका के बीच यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही तनाव का मुद्दा बना हुआ है। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर के जवाब के बाद पिछले दिनों ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला गया था लेकिन अब एक बार फिर से गर्मा गया है। दरअसल CNN ने भारतीय पेट्रोल मंत्री से रूस से तेल खरीदने पर नैतिकता का मुद्दा उठाया। इस पर हरदीप सिंह पुरी ने साफ कह दिया कि रूस तेल खरीदने से कोई नैतिक विवाद नहीं है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर यूरोप और अमेरिका की खपत से तुलना की जाए तो भारत रूसी तेल का केवल 0.2% ही खरीदता है जो बहुत खास नहीं है। उन्होंने भारत की स्थिति को साफ करते हुए एंकर से कहा कि मैं आपके दृष्टिकोण को ठीक करना चाहूंगा। हमने 31 मार्च 2022 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में रूस से 0.2% तेल खरीदा है जो 2% भी नहीं है। यूरोप जितना एक दोपहर में तेल रूस से खरीदता है उसका केवल 1/3 हमने रूस से खरीदा है।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुजरात के मोरबी शहर के एक पुल टूटने से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति सोमवार को गहरी संवेदना जताई। एक सदी से भी अधिक पुराने पुल को व्यापक मरम्मत और नवीनीकरण के बाद 5 दिन पहले आम लोगों के लिए फिर से खोला गया था। हालांकि रविवार शाम को पुल पर अत्यधिक संख्या में लोगों के होने से पुल टूट गया और हादसे में अब तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बाइडेन ने एक बयान में कहा कि आज हमारा दिल भारत के साथ है, हमारा दिल गुजरात के लोगों के शोक में उनके साथ है और उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने पुल टूटने के चलते अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत अपरिहार्य साझेदार है, हमारे नागरिकों के बीच गहरे संबंध हैं। इस कठिन घड़ी में हम भारतीयों के साथ खड़े रहेंगे और उनका समर्थन करना जारी रखेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस घटना पर दुख जताया है।
ईरान के मामलों में अमरीकी प्रतिनिधि रॉबर्ट माले ने कहा है कि अगर जरूरी हुआ तो अंतिम विकल्प के रूप में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार रॉबर्ट मॉले ने कहा कि ईरान के साथ परमाणु समझौते के लिए हम अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि परमाणु समझौतों को जीवित करना और ईरान से प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए वार्ता वाशिंगटन की कार्यसूची में भी नहीं है। मॉले ने सोमवार को एक सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा कि अमरीका ईरान के साथ उन मामलों पर ध्यान केंद्रित किए हुए है जो अमरीका के लिए लाभप्रद हो, और अगर इस समय ईरान के साथ वार्ता में कुछ नहीं होने वाला तो अमरीका भी अपने समय को नष्ट नहीं करेगा। सीएनएन ने रॉबर्ट मॉले के हवाले से रिपोर्ट दी है कि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को सीमित करने के लिए अब भी कूटनायिक मार्ग के प्रति कटिबद्ध है और ईरान में अशांति के हालात में वो अपना ध्यान व प्रयास मास्को यूक्रेन जंग पर केंद्रित कर रखा है। इसी प्रकार उन्होंने यह भी दावा किया कि वियना वार्ता में हम बारंबार परमाणु समझौते के बहुत निकट पहुंच गए थे, परंतु ईरान ने नई मांग कर दी जिसकी वजह से वार्ता अपने मार्ग से हट गई।
तुर्की के विदेश मंत्री ने अपने ईरानी समकक्ष से टेलीफोनी वार्ता में कहा कि ईरान और तुर्की न केवल दो पड़ोसी देश हैं बल्कि दो भाई देश हैं और सख्ती व कठिनाई के दिनों में एक दूसरे के साथ रहे हैं। समाचार एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार अमीर हुसैन अब्दुल्लाया ने तुर्की के अपने समकक्ष मौलूद चाउश ओगलू के साथ सोमवार को टेलीफोनी वार्ता में महत्वपूर्ण द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया। इस वार्ता में ईरान के विदेश मंत्री ने मौलूद चाउश ओगलू के साथ टेलीफोनी वार्ता में तुर्की के राष्ट्रीय दिवस की मुबारकबाद दी।
इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूं, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं आर्मेनिया के प्रधानमंत्री की तेहरान यात्रा, सर्दी का मौसम दिल्ली वासियों के लिए बना मुसीबत और यूरोप में बढ़ता चरम पंथ का रुझान। तो सबसे पहले आर्मेनिया के प्रधानमंत्री की तेहरान यात्रा का विषय। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान आज मंगलवार को एक उच्च स्तरीय राजनीतिक और आर्थिक प्रतिनिधि मंडल के साथ तेहरान के दौरे पर आए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। एक समीक्षा के साथ साथी मोहम्मद मेहदी।
आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान आज मंगलवार को एक राजनीतिक और आर्थिक प्रतिनिधि मंडल के साथ तेहरान पहुंच गए। समाचार एजेंसी इरना की रिपोर्ट के अनुसार आर्मेनिया के प्रधानमंत्री की तेहरान यात्रा राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी के आधिकारिक निमंत्रण पर हो रही है और तेहरान के सादाबाद भवन में स्वागत समारोह आयोजित होने के बाद आर्मेनिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भेंट वार्ता करेंगे और आशा है कि दोनों पक्ष इस यात्रा के दौरान कुछ समझौतों और सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर करेंगे। राष्ट्रपति कार्यालय के सहायक मोहम्मद जमशीदी ने बल देकर कहा कि इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति तेहरान की यात्रा पर आए थे और आर्मेनिया भी काकेशिया क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश है और इस देश के प्रधानमंत्री द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर ईरानी अधिकारियों से विचारों का आदान प्रदान करने के लिए तेहरान आए हैं। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि आर्मेनिया के प्रधानमंत्री अपने तेहरान प्रवास के दौरान ईरानी अधिकारियों से भेंट वार्ता करेंगे। जमशीदी ने क्षेत्र में ईरान की वर्तमान सरकार के डिप्लोमेसी के महत्व की ओर संकेत किया और कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान ने साथ ही तेहरान में दूसरे देशों के अधिकारियों का स्वागत भी किया है और ये यात्राएं दूसरे देशों के साथ ईरान के संबंधों को बेहतर बनाए जाने के परिप्रेक्ष्य में होती रही है। राजनीतिक टीकाकार आर्मेनिया के प्रधानमंत्री की तेहरान यात्रा को दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ बनाए जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देख रहे हैं। आर्मेनिया वो देश है जिसे राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने दोस्त देश की संज्ञा दी है और बल देकर कहा कि इस्लामी गणतंत्र ईरान आर्मेनिया सहित काकेशिया क्षेत्र के देशों को विशेष महत्व और अच्छे पड़ोसी देशों की दृष्टि देखता है और तेहरान आर्मेनिया और ईरान के संयुक्त सीमा का लाभ उठाते हुए परस्पर संबंधों को मजबूत बनाने के प्रयास में है। राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने कहा कि ईरान और आर्मेनिया दो संयुक्त सभ्यता और संयुक्त इतिहास के स्वामी देश हैं और दोनों ने हमेशा विकास के मार्ग को एक दूसरे के साथ मिलकर तय किया है। जानकार हलकों का मानना है कि एक ओर काकेशिया क्षेत्र में समाप्त न होने वाले संकट और दूसरी ओर क्षेत्र से बाहर के देशों व शक्तियों का हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन इस क्षेत्र के हालात के जटिल होने का कारण बना है और इस्लामी गणतंत्र ईरान ने बारंबार ऐलान कर रखा है कि काकेशिया क्षेत्र में सीमा में परिवर्तन उसकी रेड लाइन है और वो कूटनीतिक मार्गों से क्षेत्र के विवादास्पद विषयों के समाधान पर बल देता है। बहरहाल आर्मेनिया इस्लामी गणतंत्र ईरान का एक पड़ोसी देश है और दोनों देशों के मध्य अच्छे व प्रगाढ़ संबंध न केवल दोनों देशों के हित में है बल्कि क्षेत्र विशेषकर दूसरे पड़ोसी देशों को भी इससे लाभ पहुंचेगा और आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के तेहरान यात्रा को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।
और अब रुख करते हैं भारत का।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रहने वालों के लिए सर्दियों का मौसम मुसीबत बनता जा रहा है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ नई दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
सर्दी का मौसम आरंभ होते ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर जहरीली होने लगी है। दिल्ली में हर तरफ धुएं के बादल छाए हैं और पेड़ों पर भी प्रदूषण को देखा जा सकता है। पिछले सोमवार को धुंध की परत छाई रही थी और वायु गुणवत्ता सूचकांक 392 तक पहुंच गया था जो बहुत खराब श्रेणी में आता है।
हम जम्मू से हैं तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही साफ सुथरा है लेकिन यहाँ पे हमें सांस लेने में इतनी तकलीफ हो रही है कि मतलब हमें गला खराब हो रहा है, खांसी हो रही है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है हमें।
आज दिल्ली के स्थान पर AQI 550 को भी पार कर गया था। वायु प्रदूषण दिल्ली वासियों के लिए चिंता का कारण बन रहा है।
दिवाली के बाद तो थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा है, जैसे सुबह के माहौल में देखा जाए तो धुंध ज्यादा बढ़ गई है।
वायु प्रदूषण नियंत्रण करने वाली एक समिति की समीक्षा के अनुसार दिल्ली में लोग 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच सबसे खराब हवा में सांस लेते हैं और इस दौरान पराली जलाने की घटनाएं भी अपने चरम पर होती हैं, जिससे वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है और दिल्ली में इसका योगदान बढ़कर 22% तक पहुंच गया है। परंतु एक किसान का कहना है कि इस वर्ष मवेशियों के पराली खाने से पराली जलाने में काफी कमी आई है।
चारा इतना महंगा हो रहा है, पशु रखने मुश्किल हो रहे हैं, तो पराली उराली इधर उधर से खिला के उनका गुजारा कर रहे हैं। जो लोग जिनका काम ही पशुपालन है, तो अब फिर इतनी पराली जला भी लोगे खिला भी लोगे कहाँ से आएगी इतनी।
सरकारी स्तर पर वायु प्रदूषण को रोकने या कम करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं और दिल्ली में हर प्रकार के निर्माणों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और नागरिकों से भी वायु प्रदूषण की रोकथाम की अपील की जा रही है। 0 से 50 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक को अच्छा माना जाता है, जबकि 51 से 100 को संतोषजनक, 101 से 200 को मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 बहुत खराब और 400 से 500+ को खतरनाक और बहुत खतरनाक की श्रेणी में रखा जाता है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
और अब चलते हैं यूरोप। यूरोपीय देशों में चरमपंथ और दक्षिण पंथ के रुझान में वृद्धि होती जा रही है। इटली के पूर्व तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के सत्ता में पहुंचने की वर्षगांठ पर इस देश में के हजारों लोगों ने उनके सम्मान में रैली निकाली। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी कायम रिजवी।
यूरोपीय देशों में इस समय चरमपंथ और दक्षिण पंथ की ओर झुकाव बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इटली के पूर्व तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के सत्ता में पहुंचने की वर्षगांठ पर इस देश के हजारों लोगों ने उसके सम्मान में रैली निकाली। 31 अक्टूबर को कई हजार लोग प्रेडापियो नगर में तानाशाह मुसोलिनी के मकबरे पर एकत्रित हुए। ये लोग रोम रैली की 100वीं वर्षगांठ पर एकत्रित हुए थे, जिस दौरान फासीवादी राष्ट्रीय पार्टी ने इटली की राजधानी रोम पर कब्जा करके वहां के तत्कालीन शासक को अपनी सत्ता तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के हवाले करवाई थी। मुसोलिनी को 20वीं शताब्दी के सबसे बुरे तानाशाह के रूप में देखा जाता है। उसके मकबरे पर हजारों लोगों का एकत्रित होना धुर दक्षिणपंथी और नव फासीवादी शक्तियों के सामने आने का परिचायक है, जिसको इटली सहित पूरे यूरोप में देखा जा सकता है। वर्तमान समय में इटली में जॉर्जियो मेलोनी की सरकार है, जिनका दल दक्षिणपंथी है। ब्रदर्स ऑफ इटली दल का झुकाव फासीवाद की ओर है और ये मुसोलिनी को आदर्श के रूप में मानती है। जॉर्जियो मेलोनी की ब्रदर ऑफ इटली पार्टी को आम चुनाव में सबसे अधिक वोट मिले हैं, जो ये बताते हैं कि यूरोप में अतिवाद और फासीवाद किस सीमा तक बढ़ रहा है। हालांकि इटली में भी बहुत से लोग दक्षिणपंथी दलों की सत्ता को पसंद नहीं करते हैं। एक दक्षिणपंथी पार्टी के सत्ता में आ जाने के बाद इस बात की प्रबल संभावना हो जाती है कि यूरोपीय देशों में अतिवाद की ओर रुझान और तेजी से बढ़े। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि ये रुझान सारे यूरोप वासियों में पाया जाता है, बल्कि बहुत से लोग इसके विरोधी भी हैं। इन वास्तविकताओं के दृष्टिगत ये कहा जा सकता है कि इटली में जॉर्जियो मेलोनी के नेतृत्व में ब्रदर ऑफ इटली पार्टी के सत्ता में आने से ये खतरा पूरे यूरोप में बढ़ सकता है। इसका एक कारण ये भी है कि स्वीडन जैसे उदारवादी देशों में भी दक्षिणपंथी दलों की ओर झुकाव बढ़ा है। ब्रदर ऑफ इटली के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो देश में पलायनकर्ताओं के प्रवेश की विरोधी है और यूरोपीय संघ के कुछ फैसलों से भी वो असहमत है। इस पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि यूरोपीय संघ के फैसलों में इटली के राष्ट्रीय हितों को वरीयता दी जानी चाहिए। यूरोप में जो दक्षिणपंथी दल उभर रहे हैं, उनमें से अधिकांश इस्लाम विरोधी विचारधारा को बढ़ावा दे रहे हैं। वे पलायनकर्ताओं विशेषकर मुसलमानों के अपने देश में प्रवेश का विरोध करते रहते हैं।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है, इस्लामी गणराज ईरान की आवाज। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे राजनीतिक चर्चा। हमारे साथी अख्तर अब्बास से अब आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है कार्यक्रम कुरानी किस्से।
قرآنی قصے۔
دوستو، ساپتاہک کارکرم قرآن قصے کی ایک انی کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں حاضر ہیں۔ محمد مہدی کا سلام سویکار کیجیے۔ دوستو، آج کے کارکرم میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ پوتر قرآن کے سورہ فرقان کی 68ویں آیت کب نازل ہوئی تھی۔ عبداللہ بن مسعود نام کا ایک ویکتی تھا، اس کا جنم پوتر نگر مکہ میں ہوا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط نام کا قریش قبیلے کا ایک سردار تھا، اس کے پاس کافی بھیڑ بکری تھی جنہیں بچپن اور جوانی میں عبداللہ بن مسعود چلاتا تھا۔ ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک انوائی کے ساتھ عبداللہ بن مسعود کے بھیڑ بکریوں کے جھنڈ کے پاس سے اس حالت میں گزرے کہ پیغمبر اسلام اور ان کا انوائی دونوں بھوکے پیاسے تھے۔ ان دونوں لوگوں نے عبداللہ بن مسعود سے دودھ مانگا۔ اس پر عبداللہ نے کہا، میں امانت دار ہوں اور مجھے کسی کو دودھ دینے کی انمتی نہیں ہے۔ اس پر پیغمبر اسلام نے فرمایا، بھیڑوں میں کوئی ایسی بھیڑ نہیں ہے جو اب تک نہ بچہ دی ہو اور نہ پرجنن کیا ہو۔ عبداللہ نے کہا، کیوں نہیں؟ وہ جلدی سے بھیڑوں کے جھنڈ میں گیا اور ایک میمنا پکڑ کر لے آیا جو ابھی تک کوئی بچہ نہیں دیے تھا۔ پیغمبر اسلام نے اسے آگوش میں لیا، اس کے استن کو چھوا اور ایک دعا پڑھی، اور اس کے بعد اس کے استن دودھ سے بھر گئے۔ اس کے بعد ایک پتھر میں جو پیالے کے آکار کا تھا اس کا دودھ دوہا اور عبداللہ کو پینے کے لیے دے دیا، اس کے بعد سوئم بھی دودھ پیا۔ پیغمبر اسلام کا یہی چمتکار عبداللہ کو ایمان لانے کے لیے کافی تھا۔ اس آدھار پر عبداللہ بن مسعود کی گڑنا آرمبھک مسلمانوں میں ہوتی ہے۔ اسی پرکار عبداللہ بن مسعود ان پہلے مسلمانوں میں سے ہے جنہوں نے کعبے کے پاس بلند آواز میں پوتر قرآن کی تلاوت کی تھی۔ ایک دن پیغمبر اسلام کے کچھ انویائیوں نے کہا کہ ایشور کی سوگند، آج تک قریش نے اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت نہیں سنی ہے، کون ہے جو اونچی آواز میں قرآن پڑھے گا تاکہ قریش بھی سن لے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کروں گا۔ اس کے دوستوں نے اس سے کہا کہ تمہارا سمبندھ بنی مخزومی قبیلے سے ہے اور تمہارے قبیلے کے لوگ تمہیں بچانے کے لیے نہیں آئیں گے۔ اس آدھار پر سمبھو ہے کہ قریش قبیلے کے لوگ آسانی سے تمہاری ہتیا کر دیں۔ اس پر عبداللہ بن مسعود نے آرام سے کہا، ایشور ہماری رکشا کرے گا۔ اگلے دن جب قریش کے لوگ کعبے کے پاس اکاترت اور ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے تو عبداللہ نے بڑی بہادری و ساہس کا پرچے دیتے ہوئے پوتر قرآن کے دشمنوں کے بیچ مقام ابراہیم نامک استھان پر سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ قریش نے پہلے تو بڑے دھیان سے سورہ رحمان کی تلاوت سنی اور اس کے بعد کہا، عبداللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا وہ ان چیزوں میں سے کچھ پڑھ رہا ہے جو محمد لائے ہیں؟ اس کے بعد ان سب نے بڑے کروس سے عبداللہ بن مسعود پر حملہ کر دیا اور اسے خوب مارا پیٹا، یہاں تک کہ اسے لہو لہان کر دیا، پرنتو وہ تلاوت کرتا رہا۔ تلاوت کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ آیا۔ اس کے دوستوں نے کہا، ہمیں اس چیز کا بھے تھا۔ عبداللہ مسکرائے اور کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے سر کو ہلا اور کہا، جو بھی ہو سوئم کو پیغمبر اسلام پر قربان کر دوں گا، اگر وہ کہیں گے تو کل بھی یہی کام کروں گا۔ پر اس کے دوستوں نے کہا، کافی ہے، تم نے قرآن کو ان تک پہنچا دیا۔ کچھ سمے کے بعد عبداللہ کچھ مسلمانوں کے ساتھ دوبارہ حبشہ ارتھات ورتمان ایتھوپیا پلائن کر گیا۔ پہلی بار جب وہ حبشہ گیا تو 14 لوگوں کا ایک دل تھا، جس میں 10 پروش اور 4 مہیلائیں تھیں، اور یہ پلائن بعثت کے 5ویں سال رجب مہینے میں ہوا تھا، اور یہ لوگ آدھی رات کو پوتر نگر مکہ سے حبشہ کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ یہ لوگ لگ بھگ 3 مہینے تک وہاں تھے کہ ان سب کو سوچنا ملی کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور ان کے اور پیغمبر اسلام کے بیچ مت بھید ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر ان لوگوں کو بڑی خوشی ہوئی اور اسی سال شوال مہینے میں پوتر نگر مکہ واپس آ گئے۔ پرنتو جب وہ مکہ نگر کے پاس آ گئے تو انہیں پتا چلا کہ خبر جھوٹی ہے، اتہ ان میں سے کچھ دوبارہ حبشہ لوٹ گئے اور دوبارہ کسی نہ کسی قریش سردار کی شرح میں چلے گئے۔ کچھ سمے کے بعد جعفر بن ابو طالب علیہ السلام کے نیتتو میں مسلمانوں کا دوسرا دل حبشہ پلائن کر گیا۔ اس پلائن میں جناب جعفر کی پتنی اسما بن امیس بھی ان کے ساتھ تھیں۔ ان کے بعد کچھ دوسرے مسلمان بھی حبشہ پلائن کر گئے۔ جو مسلمان حبشہ گئے تھے ان میں عبداللہ بن مسعود بھی شامل تھا۔ پیغمبر اسلام جب مکہ سے مدینہ پلائن کر کے گئے اور وہیں رہنے لگے تو عبداللہ کا گھر بھی پیغمبر اسلام کے گھر کے بغل میں تھا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا اور ہمیشہ پیغمبر اسلام کے گھر آتا جاتا تھا۔ وہ پیغمبر اسلام کے اتنے قریب تھا کہ جب کوئی تازہ مسلمان مدینہ پہنچتا تھا تو وہ یہ سوچتا تھا کہ عبداللہ بن مسعود اور اس کی ماں اہل بیت میں سے ہیں۔ اسے جب بھی سمے ملتا تھا وہ اپنے گیان کی پیاس بجھانے کے لیے پیغمبر اسلام کے پاون استتو سے لابھ اٹھاتا تھا۔ وہ پوتر قرآن اور اسی پرکار پیغمبر اسلام کی حدیثوں کو یاد کرنے کی بہت کوشش کرتا تھا۔ وہ بڑی اچھی سندر اور منموہک آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ یہی نہیں، وہ دوسروں کو بھی قرآن کی تلاوت سکھاتا تھا، اور جب بھی وہ پوتر قرآن کی تلاوت کرتا تھا اس میں لین ہو جاتا تھا۔ جب وہ پرلوک میں ملنے والے عذاب و پرکوپ کی آیتوں کی تلاوت کرتا تھا تو کانپ اٹھتا تھا، کچھ سمے تک سوچ میں ڈوب جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام جب گناہ اور گناہ کاروں کو ملنے والی سزا کے بارے میں بات کرتے تھے تو عبداللہ کسی کونے میں بیٹھ کر گھنٹوں سوچتا رہتا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھتا اور نگر میں ٹہلتا تھا تاکہ کوئی گناہ کار اسے مل جائے اور اسے نصیحت کرے۔ ایک دن وہ مسجد کے باہر نکلا اور پیغمبر اسلام کی تازہ حدیثوں کے بارے میں سوچنے لگا اور یہ جاننا چاہتا تھا کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون ہے۔ اتہ اگلے دن جلدی مسجد پہنچ گیا اور اس نے پیغمبر اسلام سے پوچھا، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ آپ میرا مارگ درشن کیجیے۔ اس پر پیغمبر اسلام نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، یعنی انیک ایشورواد۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا، نردھنتا کے بھے سے سنتان کو مار دینا۔ عبداللہ بن مسعود پوچھتا رہا، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ وشواس گھات اور بلاتکار۔ یہ وہ وقت تھا جب مہان ایشور نے پیغمبر اسلام کی بات کی پشٹی کے لیے پوتر قرآن کے سورہ فرقان کی 68ویں آیت نازل کی۔ اس آیت میں مہان ایشور نے سچے مومنوں کی کچھ وشیشتائیں بیان کی ہیں۔ اس آیت میں مہان ایشور کہتا ہے، جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں بلاتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہیں مانتے ہیں، اور کسی کی ناحق ہتیا نہیں کرتے اور بلاتکار نہیں کرتے، اور جو بھی یہ کام کرے گا اسے دنڈت کیا جائے گا۔ دوستو، پیغمبر اسلام کے پوت امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت کی ویاکھیا میں فرماتے ہیں، ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وشیش شیش ان کے پاس گئے اور ان سے کہا، آپ ہماری نصیحت کیجئے۔ اس پر حضرت عیسیٰ نے فرمایا، ایشوریا دوت و پیغمبر حضرت موسیٰ نے اپنے انویائیوں سے کہا تھا کہ جھوٹی قسم نہ کھانا، پرنتو میں کہہ رہا ہوں کہ قسم ہی نہ کھانا، چاہے سچی ہو یا جھوٹی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں یعنی ان کے وشیش ششوں نے کہا، اور نصیحت کیجئے۔ تو انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بلاتکار نہ کرو، میں کہتا ہوں کہ بلاتکار کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، کیونکہ جو بلاتکار کے بارے میں سوچے گا وہ اس ویکت کی بھانتی ہے جو ایک صاف ستھرے کمرے میں آگ جلائے، یدیپی آگ کمرے کو نہیں جلائے گی مگر اس کا دھواں کمرے کی دیوار ضرور خراب کر دے گا۔ ٹھیک اسی طرح بلاتکار کی سوچ انسان کے دل اور آتما کو دوشت کر دے گا، یدیپی اسے انجام نہ بھی دے۔ دوستو، یہاں ہم اسلامی روایت کی روشنی میں مومن کی کچھ وشیشتاؤں کی اور سنکیت کر رہے ہیں۔ مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ سدیو سچ و حق بولتا ہے، سچ انسان کو پرتشٹھت بناتا ہے جبکہ جھوٹ انسان کے ویکتتو کو خراب کر دیتا ہے، اور جو انسان ادھک جھوٹ بولتا ہے اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی صحیح باتوں پر بھی لوگ جلدی وشواس نہیں کرتے ہیں اور اسے بھی سندیہ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کی بات کی جاتی ہے تو وہ اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے اور اس کا دل کانپ اٹھتا ہے، اور مومن کی یہ وہ علامت ہے جس کا ذکر پوتر قرآن میں بھی آیا ہے۔ مہان ایشور پر ایمان رکھنے والا انسان سدیو اپنے سمست کرموں پر ایشور کو ساکشی سمجھتا ہے، اور یہی آستھا اسے برے کاریوں سے روکتی ہے۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنے پالنہار کے پریم میں گناہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ گناہ انسان کو مہان ایشور کے سامیپ سے دور کر دیتے ہیں، اور مہان ایشور سے دوری کو وہ اپنے لیے سب سے بڑا عذاب سمجھتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام دعائے کمیل میں فرماتے ہیں، پالنے والے اگر تو نے مجھے نرک میں ڈال دیا تو میں تیری دوری کیسے برداشت کروں گا، یعنی یہ صحیح ہے کہ اگر مہان ایشور نے کسی انسان کو اس کے گناہوں کے کارن نرک میں ڈال دیا تو یہ بہت بڑا عذاب ہے، پرنتو جو سچا مومن ہوتا ہے وہ مہان ایشور کی دوری کو سب سے بڑا عذاب سمجھتا ہے، اور مہان ایشور کے سامیپی اور اس کی یاد میں جو مٹھاس ہے وہ دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ دوستو، مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ جب پوتر قرآن کی آیتوں کی تلاوت ان پر کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں وردھی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ویکتی سوئم کو مومن سمجھتا ہو اور اگر اس کے سامنے پوتر قرآن کی تلاوت کی جائے اور اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہو تو اسے اپنے ایمان کے بارے میں چنتن منن کرنا چاہیے، اور جن چیزوں کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو گیا ہے ان سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسے پاپ۔ پاپ انسان کے دل کو سخت و کٹھور بنا دیتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ آپ سے ودا چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑراج ایران کی آواز۔ دوستو، آپ ابھی کاریکرم قرآن قصے سن رہے تھے ہمارے ساتھی محمد مہندی سے۔ اب آپ کی سیوا میں پیش کیا جا رہا ہے آج کی سبھا کا انتم کاریکرم، جیوک یدھ کا خطرہ۔
जैविक युद्ध का खतरा।
दोस्तों, कार्यक्रम जैविक युद्ध का खतरा नामक कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं स्वाति और अख्तर अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, जैविक संकटों की घटना और आर्थिक लाभ के लिए प्रकृति की क्षमता का विनाशकारी उपयोग और प्रतिद्वंद्वी देशों की शक्ति पर प्रहार एक ऐसा मुद्दा है जो आज दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है। 10 कार्यक्रमों पर आधारित इस श्रृंखला के दौरान हमने आपको मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर जैविक खतरों के अपूर्णीय व अपरिहार्य विनाशकारी प्रभावों से परिचित कराने का प्रयास किया। कार्यक्रम के अंतिम भाग में हम इस संबंध में थिंक टैंकों और विशेषज्ञों के विचारों की जांच करने का प्रयास करेंगे।
आज मीडिया की ताकत व शक्ति तेजी से समाचार और इससे जुड़ी सामग्री को जुटाने और उसको बनाने में व्यस्त है और दुनिया भर में किसी भी खतरे या घटना की रिपोर्ट कर सकती है। साथ ही मीडिया सही प्रशिक्षण और खतरों के बारे में सही जानकारी देकर इस प्रक्रिया को बदलने के लिए जनमत की शक्ति का उपयोग करके जैविक खतरों के क्षेत्र में देशों के नकारात्मक प्रदर्शन को जनमत में स्थानांतरित कर सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैविक मुद्दों से संबंधित विशेष अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रदर्शन की भी जांच कर सकता है ताकि उन्हें उनकी कमियों को दूर करने के लिए एक प्रभावी समाधान प्रदान किया जा सके। वर्तमान युग में जिस समय दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रसार हुआ, मीडिया ने अपने कार्यों के माध्यम से जनमत पर गंभीर प्रभाव डाला और अपने प्रशिक्षण के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।
फिर भी मीडिया के दिग्गजों की महाशक्तियों पर निर्भरता ने समस्याएं खड़ी कर दी है। जैविक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और उपयोग के क्षेत्र में मुख्य उल्लंघनकर्ता संदिग्ध महान शक्तियां हैं, जबकि अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का एकाधिकार इन देशों के पास है। सार्वजनिक जागरूकता की लहर पैदा करना और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर कानूनों में सुधार और मजबूत निरीक्षण और इसके साथ ही पूंजीवादी मीडिया दिग्गजों द्वारा अपनी धमकीपूर्ण गतिविधियों को रोकने के लिए सरकारों पर दबाव बनाना भी संभव नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के लिए प्रतिबंध देशों के विदेशी मीडिया का प्रवेश जैविक खतरों और युद्धों से निपटने के लिए सरकारों की प्रतिबद्धता में एक बहुत ही प्रभावी भूमिका निभा सकता है। जैविक खतरों और जैविक युद्धों के बारे में वैश्विक जागरूकता की आवश्यकता है, इसीलिए जैविक गतिविधियों की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को मजबूत करने और जैविक गतिविधियों के क्षेत्र में महान शक्तियों के उल्लंघन का मुकाबला करने की आवश्यकता है एक अटल सच्चाई और एक अहम आवश्यकता है जिस पर विशेषज्ञों ने हमेशा जोर दिया है।
कार्नेगी इंस्टीट्यूट ने एक लेख में कहा है कि कमजोर और उच्च खतरों वाली निगरानी और जैविक हथियार नियंत्रण प्रणाली कन्वेंशन के साथ मौजूदा प्रणाली पर्याप्त प्रभावी नहीं है और अभी भी नए जैविक खतरों की संभावना पाई जाती है। कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के अनुसार जैविक हथियार कन्वेंशन को पहले मजबूत किया जाना चाहिए क्योंकि जैविक क्षेत्र में कुछ नई तकनीकों पर जैविक हथियार कन्वेंशन में चर्चा नहीं की गई है और यह एक महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा खतरा है।
संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे इस कन्वेंशन पर ध्यान दें और उन्हें दुनिया के अन्य देशों के नए मानदंडों को स्वीकार करने और पिछले वालों को मजबूत करने के लिए आमंत्रित करें। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्नेगी एंडोमेंट ये मानता है कि राष्ट्रों को जैविक हमलों का मुकाबला करने की अपनी क्षमता को मजबूत करना चाहिए और हमलों के स्रोत का जल्द से जल्द पता लगाने के तरीकों पर काम करना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्नेगी एंडोमेंट जैसी अमेरिकी सरकार में प्रभावशाली स्थिति के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से सैन्य प्रयोगशालाओं में अमेरिकी जैविक गतिविधियों की व्यापकता से अवगत है। कई सरकारों ने जैविक हमलों से बचाव के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है। उनका यह भी मानना है कि अमेरिका अपने तकनीकी ज्ञान और व्यापक प्रभाव को देखते हुए जैविक हथियारों के खिलाफ प्रयासों में बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकता है। थिंक टैंक विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ चीन के सहयोग को संगठन के साथ अमेरिका के सहयोग से अधिक मजबूत मानता है और कहता है कि सरकारों और वैज्ञानिकों को जैविक हथियारों को रोकने के लिए तत्काल काम करना चाहिए।
यूरोपियन लीडरशिप नेटवर्क नामक थिंक टैंक ने जैविक हथियारों के लिए बड़ी शक्तियों के दृष्टिकोणों की आलोचना करते हुए जैविक हथियार कन्वेंशन को विश्व शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी करार दिया है, जबकि कुछ देशों को कन्वेंशन के प्रति प्रतिबद्धता के लायक ही नहीं समझा। थिंक टैंक ने जैविक हथियारों के कन्वेंशन द्वारा उल्लंघनों से निपटने और मामलों को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की कार्रवाई को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है, लेकिन साथ ही इस बात पर जोर भी दिया है कि कन्वेंशन में सत्यापित होने की क्षमता का अभाव है। एक बड़ी कमजोरी जिसका 2002 में अमरीका ने विरोध किया था, इसकी एक वजह बनी है। वास्तव में कुछ देश जैसे कि अमरीका जैविक हथियार कन्वेंशन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय नियामक प्रणालियों के कानूनों और मानदंडों को मजबूत करने का विरोध करते हैं।
हेरिटेज इंस्टीट्यूट जैविक वायरस के मुद्दे को मनुष्य के लिए एक गंभीर खतरा मानता है और कोविड-19 के संदर्भ में सरकारों की तैयारियों और महामारी और जैविक हमलों की रोकथाम के लिए जल्दी कदम उठाने को महत्वपूर्ण समझता है। सम्मेलनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए थिंक टैंक ने जैविक हथियारों के खिलाफ खुद को बचाने के लिए राष्ट्रीय सरकारों के आंदोलनों के मुद्दे को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है।
नेशनल डिफेंस इंडस्ट्री एसोसिएशन में इंटेलिजेंस के वरिष्ठ निदेशक एंड्रयू क्लियांस्की ने कहा है कि जैविक खतरा प्रथाएं उभर रही हैं और अतीत की तुलना में ये अलग अनुभव है, इसीलिए उभरते हुए खतरों के खिलाफ रक्षा संरचना का निर्माण बहुत ही मुश्किल हो गया है। जैविक हथियारों के पुराने तरीकों का उपयोग कम हो गया है और उभरती हुई घटनाएं आज के विश्व समुदाय के लिए खतरा हैं।
किलियंस्की का कहना है कि जैविक हथियारों के खिलाफ लड़ाई पर समझौतों और संधियों ने अपनी व्यावहारिक भूमिका खो दी है। जैसे उदाहरण के तौर पर सीरिया में आतंकवादियों द्वारा जैविक हथियारों का प्रयोग, राजनीतिक हस्तियों की टारगेट किलिंग जैसे उत्तरी कोरिया के नेता किम जोंग उनके भाई की हत्या, इस मामले को और भी गंभीर बना देते हैं। उनका मानना है कि नए प्रकार के खतरे के लिए एक अलग बचाव की आवश्यकता होती है।
अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्नेगी एंडोमेंट, जिसे अमरीकी सरकार में प्रभावशाली स्थिति के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से सैन्य प्रयोगशालाओं में अमरीकी जैविक गतिविधियों की व्यापकता से अवगत है। कई सरकारों ने जैविक हमलों के बचाव के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया है। उनका यह भी मानना है कि अमेरिका अपने तकनीकी ज्ञान और व्यापक प्रभाव को देखते हुए जैविक हथियारों के खिलाफ प्रयासों में बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकता है। थिंक टैंक विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ चीन के सहयोग को संगठन के साथ अमेरिका के सहयोग से अधिक मजबूत मानता है और कहता है कि सरकारों और वैज्ञानिकों को जैविक हथियारों को रोकने के लिए तत्काल काम करना चाहिए।
प्रिय श्रोताओं, अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंकों और विशेषज्ञों के विचारों के अनुसार जैविक खतरों की वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की रणनीति को कई श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। पहला उपाय जैविक हथियारों के उत्पादन, भंडारण, विकास, बिक्री और उपयोग में उल्लंघनों को दूर करने के लिए मानदंडों को मजबूत करना, मजबूत निरीक्षण और कानूनी खामियों को दूर करना और जैविक तबाही होने से पहले उल्लंघनकर्ताओं से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हस्तक्षेप करना इत्यादि। दूसरा उपाय दुनिया भर में स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा जन जागरूकता और जांच तथा छानबीन बढ़ाना, जनता की राय के दबाव को मजबूत करना और सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उल्लंघन के खिलाफ लोगों की मांगों को आगे बढ़ाना है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए जैविक खतरों की वर्तमान स्थिति से उबरने का एक अन्य तरीका सरकारों के बीच सहयोग को मजबूत करना हो सकता है। यह सहयोग अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और जैविक हथियारों के बिना दुनिया के लिए बहुत ही जरूरी है। कुछ नेताओं द्वारा सरकारी सहयोग के महत्व को महसूस किया जा सकता है और इसके लिए वैश्विक सहमति की आवश्यकता होती है। एक मुद्दा जो संयुक्त राष्ट्र संघ की ऐतिहासिक भूमिका और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का सहयोग साकार करने में बहुत ही प्रभावी हो सकता है।
दोस्तों, कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में हमने आपको विनाशकारी जैविक खतरों, देशों के दृष्टिकोणों, इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कन्वेंशनों और जैविक संकटों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों से परिचित कराया। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराएं। कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। आपसे अनुमति चाहते हैं।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, आप हमारे प्रसारण को शॉर्ट वेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हम आशा करते हैं कि हमारा प्रयास आपको पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत करवाते रहिए। तो अगली सभा तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।